विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो।
बात आज की मुरली में एक बात खास बाबा ने कही है, अपने याद के चार्ज को प्लीज बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कितना भी कर्म योगी हो, काम तो करना है, वो करते हुए अपनी याद को बढ़ाते जाओ। और दूसरा बाबा ने क्या कहा है, सफला कर दो। अच्छा, समर्पण नहीं हो सकते हुए, जैसे दादी ने अच्छी तरह से एक ही टॉपिक पर जैसे समर्पण स्पष्ट बता दिया किसको कहा जाता है। सबके कान खुले ना, क्या करें भाई, करो कोई फैसला। कौन फैसला करेगा इसका, कौन करेगा, कौन सा वकील जज करेगा। तो बाबा कहते जज योर सेल्फ, ये बाबा की मीठे बोल है, जज योर सेल्फ। तुम सुनो, आप जज करो। तो मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, तो अपने आप जज करो। वकील वकील करेंगे तो फालतू टाइम जाएगा, फालतू खर्चा होगा। वो एक तरफ लेगा, वो दूसरा तरफ लेगा। मीठे बच्चे, बाप को और चक्कर को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ इसे नरक से दिल हटा दो, सिंपल। तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? सचिन ये सुन लो, करो उद्धार सबका। अभी पार सब अपना उद्धार कर रहा है, ये अपने परिवार का उद्धार कर रहा है। देखो अमचंद भाई तेरे से होशियार हो रहे हैं, हाँ, सारे परिवार को यात्रा करा देने का। अभी उद्धार करना है ना सबका। बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम में नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट आया हुआ है, तो अपना सब कुछ सफल कर दो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, कितनी बातें बोली, सफल करो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ और श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। वेद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, समझाया उसको जाता है, जो बेसमझ होते हैं। ये बोलिए सर मुझे याद है बड़ी प्यार से समझा हो जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो बरोबर सपतित है और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य तो जरूर बेसमझ ही कहेंगे ना, पतित जरूर बेसमझ ही कहेंगे ना। सब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सत्युग में ये भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था, पावन ग्रस्त धर्म था पर पावन था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाबर समझाते हैं आधा क्लब से भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब है भक्ति मार्ग। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे बाप को जानते ही नहीं है। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है पर देवताएं वहां मार्ग जाते हैं। लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। देखो कार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवताओं के मंदिर बनाते हैं। फिर बाबा फिर से सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, उस समय के हिसाब अनुसार कोई करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा। उस समय के हिसाब से कोई करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा। आज लाख क्या है, 100 के बराबर। क्या समझते हैं लाख क्या है? हमारे आगे के दिनों में 100 रुपया भी बड़ी बात थी। अभी लाख तो जब भक्ति मार्ग में द्वापर में मंदिर बनाऊंगा खर्च नहीं किया, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वह मंदिर होता था पद्मों की मिलकियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे वेद शास्त्र अध्ययन करना ये सब भक्ति है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। सत्युग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियां तो सत्युग में भी है, अभी भी है। सत्युग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चली है। पहले अविचारी भक्ति होती है, शिव की पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति विचारी हो गई है। भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए ना। पर सज्जनिया मुझे एक साजन को याद करती है। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। कहां से पकड़ता है बाबा? भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले जाओ। उनको ये पता नहीं कि भगवान कौन है। शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव शंकर को इकट्ठा कर लिया है, ऐसी बुलिया पर के सुन के मंदिरों में जाकर भाषण किए, बहुत अच्छे अच्छे लोग प्यार से सुनते हैं। धीरे धीरे शांति से बैठ करके करो भाषण, नहीं पर बैठ कर बस ऐसी मीठी बातें सुनाओ तो उनके भी कान खुलते हैं। देखो तो मच्छर आ रहा है यहाँ भी बीच में है, दोनों अलग अलग। वह निराकार है, वह सूक्ष्म शरीरधारी है, वह मूल वतन में रहने वाला है, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, दोनों का स्थान ही अलग है। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते शिव शंकर के बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते फिर सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कहेंगे शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक एक अक्षर जैसे बेसमझ को समझाना, शुरू से बाबा आज बोलिए बेसमझ को समझाने के लिए एक एक अक्षर पर एक परम पिता परम, जब एक कहते हैं ना तो परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार कैसे तुमको पढ़ाता हूं, बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है भाई, इसको भगाओ यहां से। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है, बैल पर तो सामान लाते हैं। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? शिव बाबा को लगता है मेरी सवारी बैल पर क्यों, बैल पर मलाया जाता है। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करके आता हूँ, इनके 84 जन्मों की कहानी बैठों को सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुखवन सवाली आकर के बने हो। इनका नाम है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, क्यों पहले पहले ये सुनता है भाग्यशाली रथ, क्यों पहले पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है। सत्य में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है अपने घर। तो अभी इसमें ऐसे है नहीं, हमने कहा पहले जब मुरली परी थी ये भागीरथ, हमें सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली कौन है? हमें जो हमको वापस परमात्मा रथ पर बैठ करके सुना रहा, सुनने वाले तो रहे हैं कि सत्य में आने वाले वो सुनेंगे, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है अपने घर। जहां से आई है वहां जाती है, ये कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये सत्युग त्रेता नहीं होता है, ये ड्रामा का चक्कर यहां फिरता है। फिक्र सारी मूली बेसमझों को समझा रहा है, ये ड्रामा का चक्कर यहां फिरता है। आधा कलप ज्ञान सत्युग त्रेता, आधा कलप भक्ति द्वापर कलयुग। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राज ही चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी, राम की डायनेस्टी। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, 64 जन्म नहीं बताया है। ये है 84 जन्मों की कहानी। बाप भी बैठ समझाते हैं, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। ब्राह्मण को नशा हो, बाप हमको ही मिलता है। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है और किसको नहीं। तो पराया है बाबा ने ब्राह्मणों को बैठ, बाकी सबको हमारे वाले कर दिया है, ये तुम्हारा काम है। अच्छा बाबा, बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं, बच्चे जो बने हैं उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति करके साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बैठ बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो, यहाँ बैठ के क्या करते हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो ऐसे योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान है, अभी तुम तमो प्रधान है, याद से तुम्हारी खाद निकलती जाएंगी, एक विक्रम विनाश होंगे, फिर याद से खाद निकलती जाएंगी, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तकलीफ से लोगों को बाहर बहुत है, प्रॉब्लम का तो भंडारा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है, देवताएं कभी बीमार नहीं होते हैं, इसे याद से तुम निरोगी बनेंगे। पाप बन बसम होने से ही तुम पावन बन जाते हो, पाप बसम होने से ही तुम पावन बन जाते हो। बड़ी भारी कमाई है, घूमो फिरो फिर मुझे याद करो, पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे, ये ख्याल में बात हो, कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है ना। सिर्फ माँ में कम याद करो, ये किसने कहा, सिर्फ माँ में कम याद किसने कहा, बाप ने आत्माओं को कहा, माँ में कम याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, आत्माएं सुनती हो, बाप मुख से कहता है, बाप मुख से कहता है मुझे याद करो और घर को याद करो। अब ये नरक खलास होने वाला है, तुमको जानना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो, बल तुम कर्म योगी हो तो कम से कम 8 घंटे तक तो याद को तक जरूर पहुंचो। पांच मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे करके चाट को बढ़ाते रहो, जांच करते रहो हमने कितना समय बाबा को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं, कितनी सहज युक्ति है। चक्कर का नाले समझाया है कि चोटी ब्राह्मण चोटी है ब्रह्मा, फिर देवता, खित्री व शूद्र। ये चक्कर याद करना है। फिर और क्या करने का है? ब्रह्मा, देवता, खित्री व शूद्र, चक्र को याद कर। फिर बीज और झाड़ को याद करना है। अभी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सत्युग में एक धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझे बीज को याद करो और झाड़ को याद करो, स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग है और सहज ज्ञान है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ये बीज से कैसे झाड़ निकलता है ये सारा बुद्धि में, तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान है। विचार तो करो, पर बुद्धि को तो देखे। जो ऋषियों मुनियों के बुद्धि में नहीं है वो हमारे बुद्धि। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है। रहो फल ग्रस्त में, पर पवित्र रहना है। ये तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं तेसरे जन्म तुमने नरक में गोते बहुत खाए हैं, पाप किए हैं, तो बिल्कुल पापात्मा बन पड़े हो। रावण के मत पर चलते आए हो, नरक में गोते खाए हैं, पाप किए हैं, रावण के मत पर चलते आए हो। गांधी जी भी रामराज चाहता था, उसका मतलब रामराज थे ना, रामराज में थे ना। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। मलिन का कारण कितनी मलिन हो गई है। सर्व कब था ये भी किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए है ये किसको मालूम नहीं है। सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब दुनिया पुरानी हो जाती है दिल हट जाती है। जब याद आए ना स्वर्ग कब था कैसा था, तो नर्क से दिल हटते थे। तुम यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, यह तुम्हारा अंतिम 84 जन्म है। विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की कथा, सत्य कथा सुन रहे हैं। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं। करोड़े पद्म रुपए खर्च करते हैं, बाबा सारा हिसाब ले रहा है। शास्त्रों आदि भक्ति में कितना खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सब सच बता करके सच खंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी समझाया जाता है, कैसी भी अबलाएं, गंकाएं, अहल्याएं स्वर्ग का मालिक बन सकती है। गन का, एल्या, कुबजाएं, तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल है, तो अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो कीचा धन था, यहां तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? जहां कागजों के फाइल ही है और तो कुछ है नहीं। क्या रखा है? कागज ही कागज, कागज ही कागज। जहां कोई ऑफिसों में जाओ क्या लगा पड़ा है? अभी तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर, कंप्यूटर ही कंप्यूटर। जहां जाओ फाइल चले गए, अभी कंप्यूटर लगे पड़े हैं। अभी क्या करेंगे कंप्यूटर को? कुछ भी रखा नहीं है वहां सत्युग में। तो गरीब से गरीब का मैल भी यहां से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा, वहां सब सस्ता ही रहती है। सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल बाबा देता है, भक्ति मार्ग में दो मुट्ठी ईश्वर देते आए हैं। कोई 5-10-100 रुपए भी दान करते हैं ना, उसका इवजा दूसरे जन्म मिलता है। इसलिए तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है। किसी का स्वास्थ्य नहीं जाता, देखते ना तो कहेंगे, बेटे को कहेंगे कुछ दान कराओ ना, कुछ तो कराओ, बेचारे का प्राण जाए। कुछ कराओ इसके लिए, कुछ कराओ। मैंने आपको बताया, मैं गई थी बॉम्बे में और चंद्रा भाई रामचंद्र भाई के लीला को पूछने के लिए, रात को 10 बजे। आज उसे 4 बजे सरी छोड़ा, समाचार मिला करो उधार अंत मत। जिन्होंने बहुत कुछ यज्ञ में प्यारे से निभाया है, कोई बीमारी नहीं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है। कोई बीमार नहीं होते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल का साथ साथ वही हॉस्पिटल वही कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। ये तो अच्छा हो गया, यहाँ हॉस्पिटल ये कॉलेज हॉस्पिटल यहाँ पर है, यहाँ हॉस्पिटल वाले पढ़ते यहाँ करके है। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। देखो भगवान वाच है, ड्रामा प्लान अनुसार ये भगवान को पता था, ये हॉस्पिटल ये कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना वंडर है। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। सारे परिवार को लेके जाना हॉस्पिटल, दिखाना बाबा की हॉस्पिटल कैसी है। वह इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, ये डायरेक्ट 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। क्यों? आप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। मैल मारिया सब मट्टी में मिल जाने वाले है। इसलिए भविष्य की कमाई करो तो तुम्हारे काम में आवे, भविष्य की कमाई करो तो तुम्हारे काम में आवे। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकल जाएंगी, पाप भस्म हो जाएंगे, याद से खाद निकलेंगी, प्रकट जंग उतर जाएंगे। पारलौकिक बाप है, बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पार्श्व बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं, हर एक कर्म का हिसाब अपना अपना है। भाई हर एक परिवार एक ही है, हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति में समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सज्जन के पास आकर के श्री मत लो, अहल्याए कुब जाए, सबको ये रास्ता बताना है। पौत्रता परिहंगामा होता आया है, बिल्कुल नहीं दिया तो माने लग पड़े, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। पर बाबा क्या कहते हैं, बाप कैसे यज्ञ में यज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं, अब तुम पौत्र बनते हो पौत्र दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है ये अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम नाशो, पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम नाशो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है देख सत देख सब धर्म त्याग, मुझे अपने बाप को याद करो। अब कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब बात आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है इसलिए भाग्यशाली रथ है, इनको खुशी होती है, इसको खुशी होती है मेरा शरीर भगवान के काम में आता है, इसको खुशी, कितनी खुशी है, हम लोगों को खुशी है। हम बाबा के पास बैठे हैं, काम के तो है, काम के है ना। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैलाद की बात नहीं है, इन बातों को नया कोई समझ नहीं सकेगा। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन, बाप के याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटाए देना है। दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सज्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय, साधन व सेल्यूशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष पुरुषोत्तम आत्माएं, योगी पुरुष पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकते। अटेंशन प्लीज, आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसे प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्यूशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न करे। कितना अंतर योग बल चाहिए? साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधना को साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजय आत्मा। ये निमित्त आधार है, लेकिन अपने साधना का साधन को आधार नहीं बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजय आत्मा। स्लोगन एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलते हैं। ओम शांति।